एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में झांक रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी सोच को, कह सकते हैं, एक नई दिशा देने की कोशिश की। जॉन डीवी।
जॉन डीवी, हाँ, एक ऐसा नाम जो शिक्षा और लोकतंत्र के गलियारों में अक्सर सुनने को मिलता है।
बिल्कुल, और आज हम उन्हीं पर बात करेंगे।
जॉन डीवी 1859-1952, वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, मतलब सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाले नहीं।
हाँ, ऐसा लगता है।
उनके लिए दर्शन का मतलब ऊंची मीनारों में बैठना नहीं था, वो इसे जमीन पर लाना चाहते थे। जिंदगी की जो असल उलझने हैं उन्हें सुलझाने का औजार बनाना चाहते थे।
अच्छा।
और उनका सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि उन्होंने शिक्षा, लोकतंत्र और जिसे हम रोजमर्रा का अनुभव कहते हैं उसके बीच एक बहुत गहरा, एक अटूट रिश्ता देखा और समझाया।
हाँ, अनुभव, शिक्षा और लोकतंत्र, ये तीन शब्द उनके साथ हमेशा जुड़ते हैं और यही आज हमारी पड़ताल का, हमारी इस चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। हम जॉन डीवी पर जो भी जानकारी है, जो विश्लेषण है, उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने, जैसा आपने कहा, अनुभव के धागे से शिक्षा और लोकतंत्र का ताना बाना बुना।
जी,
हमारा मकसद है डीवी के जीवन की कुछ खास झलकियां देखना, उनके वो विचार जिन्होंने वाकई सोचने के ढंग को बदला, और ये समझना कि आज भी वो हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं।
और डीवी को समझने के लिए मुझे लगता है उनके समय को समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, ऐतिहासिक संदर्भ।
बिल्कुल, वो उस अमेरिका में जी रहे थे जो गृह युद्ध के बाद, मतलब बड़े बदलावों से गुजर रहा था। खेतों से निकलकर लोग कारखानों की तरफ जा रहे थे।
औद्योगिकरण का दौर।
हाँ, तेजी से बड़े बड़े शहर बस रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और समाज का पूरा ढांचा वो हिल रहा था, बदल रहा था।
हम
और इसी उथल पुथल भरे माहौल में डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत आया उसने पुरानी स्थिर सच्चाइयों की नींव हिला दी थी।
यानी एक तरह से जमीन तैयार हो रही थी नए विचारों के लिए, ज्यादा व्यावहारिक, हेगल जैसे आदर्शवादियों का असर कम हो रहा था शायद।
सही कहा आपने, डार्विन ने दिखाया कि प्रकृति कोई स्थिर चीज नहीं है, वो लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। इसने एक ऐसी सोच को बल दिया जो मानती थी कि ज्ञान भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो भी समय और जरूरत के हिसाब से बदलता है।
अच्छा।
और इसी माहौल में व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म पनपा, जिसके बड़े पैरोकारों में डेवी तो थे ही, साथ में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स जैसे विचारक भी थे।
राइट। और ये प्रगतिशील युग भी कहलाता है शायद।
हाँ, प्रोग्रेसिव एरा। ये वो दौर था जब लोग, मतलब समाज की जो समस्याएं थीं उन्हें वैज्ञानिक नजरिए से हल करने की कोशिश कर रहे थे। सुधार का एक माहौल था।
तो इस बदलते माहौल में डेवी का अपना सफर कैसे शुरू हुआ? हम जानते हैं वर्मोंट में जन्म हुआ, फिर जॉन्स हॉपकिंस से पीएचडी, लेकिन वो कौन सी खास घटनाएं थीं जिन्होंने उनके विचारों को असली मोड़ दिया?
देखिए, उनकी शुरुआती पढ़ाई, हेगल का प्रभाव, वो सब अपनी जगह है, लेकिन कुछ मोड़ बहुत अहम थे।
जैसे
पहला, मिशिगन विश्वविद्यालय में उनकी एलिस चिपमन से मुलाकात और फिर शादी। एलिस खुद एक जानी मानी प्रगतिशील शिक्षिका थीं।
अच्छा।
हाँ, और उन्होंने ही डेवी का ध्यान शिक्षा की जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं उनकी तरफ खींचा।
तो पत्नी का काफी प्रभाव रहा।
बहुत ज्यादा। और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था शिकागो विश्वविद्यालय में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना करना।
ये लेबोरेटरी स्कूल सुनने में ही बड़ा अनोखा लगता है, एक प्रयोगशाला मगर बच्चों के लिए।
हाँ, और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था, ये सचमुच एक प्रयोगशाला थी। यहाँ डेवी और उनके जो साथी थे वो अपने शैक्षिक विचारों को क्लासरूम में आजमाते थे।
अच्छा, मतलब प्रयोग करते थे।
बिल्कुल, ये देखने के लिए कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं, कौन से तरीके काम करते हैं, कौन से नहीं। यहीं से उनका जो सिद्धांत है ना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, वो मजबूत हुआ।
हाँ, करके सीखना।
हाँ, किताबी ज्ञान से हटकर अनुभव के जरिए सीखना, इस पर जोर था।
और शिकागो में ही वो जेन एडम्स के हल हाउस से भी जुड़े थे शायद, वो तो सामाजिक सुधार का एक बड़ा केंद्र था।
बिल्कुल, हल हाउस ने उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़ा। वहां उन्होंने देखा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं है बल्कि समुदाय में आपकी सक्रिय भागीदारी है। तो ये अनुभव, एलिस का साथ, लैबोरेटरी स्कूल का प्रयोग और हल हाउस का सामाजिक सरोकार, इन सब ने मिलकर डेवी के दर्शन को एक ठोस आकार दिया।
और फिर वो कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए।
जी, और वहां रहते हुए वो अमेरिका के एक प्रमुख पब्लिक इंटेलेक्चुअल, मतलब सार्वजनिक बुद्धिजीवी बन गए जिनकी आवाज सुनी जाती थी।
और वो सिर्फ लिखने पढ़ाने तक सीमित नहीं रहे, एक्टिविस्ट भी थे।
हाँ हाँ, ACLU और AAPU जैसे संगठनों की स्थापना में उनकी भूमिका थी। और सोचिए, 78 साल की उम्र में वो मेक्सिको गए।
मेक्सिको किस लिए?
जूलियन ट्रोट्स्की पर स्टालिन ने जो आरोप लगाए थे उनकी जांच के लिए एक कमीशन बना था, डेवी कमीशन। उसकी अध्यक्षता करने गए थे।
78 की उम्र में, वाकई ये तो कर्म और विचार का अद्भुत संगम है।
बिल्कुल।
चलिए अब उनके मूल विचारों पर आते हैं। आपने अनुभव शब्द का कई बार जिक्र किया, ये देवी के लिए इतना केंद्रीय क्यों था? इसका मतलब क्या था उनके लिए?
ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जो पारंपरिक सोच थी जैसे जॉन लॉक की, वो मानती थी कि हमारा दिमाग एक खाली स्लेट जैसा है ना, टेबुला रासा।
हाँ, खाली स्लेट।
जिस पर बाहरी दुनिया के अनुभव बस निष्क्रिय रूप से दर्ज होते जाते हैं। देवी ने इसे पूरी तरह पलट दिया।
कैसे?
उनके लिए अनुभव कोई पैसिव प्रोसेस नहीं था, ये एक सक्रिय अंतःक्रिया है। हम सिर्फ दुनिया को देखते नहीं हैं, हम उसमें कुछ करते हैं, उसे बदलते हैं और उस करने के जो नतीजे होते हैं उनसे सीखते हैं।
अच्छा,
ये एक लगातार चलने वाला लेन देन है जीव और उसके पर्यावरण के बीच।
यानी अनुभव सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि करके सीखना और फिर उस सीख पर सोचना, चिंतन करना है।
बिल्कुल। और यहीं पर उनकी दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, जांच।
जांच,
हाँ, इंक्वायरी। देवी मानते थे कि सीखना असल में तब शुरू होता है जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई ऐसी स्थिति जो हमारे रोज के ढर्रे को, हमारी आदत को तोड़ती है। तब हम सोचना शुरू करते हैं, चीजों को परखते हैं, समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया काफी हद तक वैज्ञानिक विधि की तरह है। आप देखते हैं, सोचते हैं, कोशिश करते हैं, नतीजा देखते हैं।
अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, उस तरह की।
हाँ, कुछ वैसा ही। देवी ने इसी वैज्ञानिक जांच के तरीके को जीवन की हर समस्या पर, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक, लागू करने की बात कही।
उदाहरण के तौर पर
सोचिए, जैसे कोई कारीगर लकड़ी के एक टुकड़े को देखता है, वो सोचता है कि उससे क्या बन सकता है, फिर वो औजार उठाता है, उसे तराशना शुरू करता है, वो देखता है कि क्या सही बन रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, जरूरत पड़ने पर वो अपना तरीका बदलता है। यही सक्रिय अनुभव और जांच है।
ये तो सीखने और सोचने के पूरे नजरिए को ही बदल देता है, और इसी सोच को उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया, खासकर अपनी किताबों द स्कूल एंड सोसाइटी और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में।
हाँ, बिल्कुल। और यहां उनका सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है। देवी ने कहा कि स्कूल भविष्य के जीवन की तैयारी की जगह नहीं है।
नहीं है तो फिर क्या है?
देवी ने कहा, स्कूल ही जीवन है।
स्कूल ही जीवन है।
हाँ, उनका तर्क था कि शिक्षा का मकसद सिर्फ बच्चों के दिमाग में जानकारी भरना नहीं है, असली मकसद है उन्हें एक लोकतांत्रिक समाज का सक्रिय, जिम्मेदार और सोचने समझने वाला नागरिक बनाना।
स्कूल ही जीवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल को समाज का एक छोटा रूप होना चाहिए?
एकदम सही। देवी चाहते थे कि स्कूल ऐसे लघु समुदाय बने, ऐसी जगहें जहां बच्चे सिर्फ पढ़ना लिखना या गणित ही में सीखें,
बल्कि
सहयोग करना सीखें, मिलकर समस्याएं सुलझाना सीखें, एक दूसरे से बहस करना सीखें और सबसे जरूरी, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। करके सीखना यह सिर्फ एक पढ़ाने का तरीका नहीं था, ये लोकतांत्रिक जीवन जीने का अभ्यास था, प्रैक्टिस थी।
और पाठ्यक्रम कैसा हो?
पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों की जिज्ञासा से जुड़े, उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ा हो, ना कि सिर्फ ऐसी चीजें हों जिन्हें रटना पड़े।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद उस समय भी उठा होगा। अगर सब कुछ करके सीखना है, बच्चों की रुचि पर आधारित है, तो क्या इसमें अकादमिक पथोरता, जो बेसिक नॉलेज है, वो कहीं छूट जाने का खतरा नहीं? उनके आलोचक तो यही कहते थे।
ये एक बहुत आम गलतफहमी है, और हाँ, उनके आलोचकों ने इस बात को खूब उछाला भी, लेकिन देवी का मतलब कभी भी ये नहीं था कि बच्चे क्लास में बस बेतरतीब ढंग से बिना किसी दिशा के खेलते रहें।
अच्छा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा एक ज्ञानी शिक्षक द्वारा, मतलब टीचर की गाइडेंस में, सावधानीपूर्वक संरचित और निर्देशित अनुभव, गाइडेड एक्सपीरियंस की बात करते थे।
गाइडेड एक्सपीरियंस।
हाँ, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे, बच्चों का बौद्धिक विकास भी करना है और उनमें सामाजिक कौशल भी विकसित करने हैं। शिक्षक का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि बच्चों को उनकी खोजबीन में, उनकी जांच पड़ताल में मदद करना है, उन्हें सही दिशा दिखानी है और उनके अनुभवों से अर्थ निकालने में सहायता करनी है।
तो कठोरता रटने में नहीं थी?
नहीं, कठोरता थी समस्या को गहराई से समझने में और उसे हल करने के तरीके खोजने की प्रक्रिया में।
यह स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो अनुभव और जांच, ये शिक्षा के जरिए लोकतांत्रिक नागरिक तैयार करते हैं, और ये विचार उनके दर्शन के एक और पहलू से जुड़ता है जिसे इंस्ट्रूमेंटलिज्म या साधनवाद कहते हैं। ये क्या है?
हाँ, इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ये डीवी के व्यवहारवाद प्रैग्मेटिज्म का उनका अपना संस्करण है, उनका अपना फ्लेवर कह सकते हैं।
अच्छा,
सरल शब्दों में कहें तो डीवी मानते थे कि हमारे जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, उनका मूल्य इस बात में नहीं है कि वो वास्तविकता का कितना सही चित्र खींचते हैं।
तो फिर किस बात में है?
मूल्य इस बात में है कि वे हमारी समस्याओं को हल करने में कितने कारगर औजार यानी इंस्ट्रूमेंट साबित होते हैं।
औजार जैसे?
जैसे मान लीजिए एक नक्शा है, वो नक्शा इसलिए सच या सही नहीं होता कि वो हूबहू जमीन जैसा दिखता है, वो सही इसलिए होता है कि वो हमें रास्ता खोजने में मदद करता है ना?
हाँ बिल्कुल, उसकी उपयोगिता में।
बस विचार भी ऐसे ही उपकरण हैं, उनका काम है हमें दुनिया में बेहतर तरीके से जीने, समस्याओं को सुलझाने में मदद करना।
यानी विचारों की सच्चाई उनकी उपयोगिता में है एक तरह से।
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उनकी किताब एक्सपीरियंस एंड नेचर में वो और गहराई में जाते हैं, वो मन बनाम शरीर, विषय बनाम वस्तु, ये जो पुराने दार्शनिक द्वंद हैं उनको नकारते हैं और अनुभव को ही मूल वास्तविकता मानते हैं। और उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है द पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम्स, उसमें वो लोकतंत्र के आलोचकों को जवाब देते हैं।
उस समय लोकतंत्र की आलोचना हो रही थी।
हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि समाज इतना जटिल हो गया है कि आम जनता शासन नहीं कर सकती। डेवी ने इसका खंडन किया।
उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि इसका हल कम लोकतंत्र नहीं बल्कि ज्यादा और बेहतर लोकतंत्र है, एक ऐसी जनता जो शिक्षित हो, सूचित हो और सार्वजनिक मुद्दों पर आपस में विचार विमर्श कर सके। तो यहां भी आप देखें, शिक्षा और संचार ये बेहतर लोकतंत्र बनाने के उपकरण हैं।
रकों से करें जैसे प्लेटो से या मार्क्स से, तो मुख्य अंतर कहाँ दिखता है?
देखिए, प्लेटो जहां शाश्वत कभी न बदलने वाले सत्यों की खोज में थे, डेवी के लिए ज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है, वो मानव अनुभव के प्रवाह में बनता है, बदलता है, वो अस्थायी है। डेकार्टिस ने मन और शरीर को अलग अलग माना था, डेवी ने कहा नहीं, ये एक हैं, अविभाज्य हैं।
और मार्क्स से?
मार्क्स की तरह डेवी भी सामाजिक बदलाव चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका रास्ता क्रांति का नहीं था, वो शिक्षा और लोकतांत्रिक सुधारों के जरिए बदलाव लाना चाहते थे और वो व्यक्तिवाद की बजाय सामाजिक संदर्भ, समुदाय, इस पर ज्यादा जोर देते थे।
तो डेवी की ये सोच, ये जो उनकी विरासत है, वो आज कितनी प्रासंगिक है?
शिक्षा में तो उनका असर साफ दिखता है, जैसा आपने कहा अभी, ये बाल केंद्रित शिक्षा, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग, ये शब्द आजकल बहुत आम हो गए हैं। निश्चित रूप से प्रगतिशील शिक्षा पर उनका बहुत गहरा प्रभाव रहा है, हालांकि ये भी सच है कि उनके विचारों को कई बार बहुत सरलीकृत कर दिया गया या गलत भी समझा गया।
हाँ, ये होता है अक्सर।
लेकिन उनका असर सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और नागरिक जुड़ाव पर जो उनका जोर था, आज के इस ध्रुवीकृत माहौल में जहां इतनी खेमेबंदी है, वो पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।
और नागरिक अधिकारों के आंदोलन पर भी असर रहा।
हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने अहिंसक सामाजिक परिवर्तन के लिए डेवी के विचारों से प्रेरणा ली थी, खासतौर पर शिक्षा और सामुदायिक संगठन के जरिए बदलाव पर उनके जोर से। यहां तक कि विचार विमर्श लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के जो आधुनिक सिद्धांतकार हैं जैसे हैबरमास, वो भी डेवी से प्रभावित हैं।
उनके कुछ कथन भी हैं जो बहुत मशहूर हुए और उनके विचारों का सार पकड़ते हैं। जैसे एक आपने बताया था, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है।
हाँ, ये उनके माय पेडागॉजिक क्रीड 1897 से है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि सीखना कोई भविष्य के लिए किया जाने वाला अभ्यास नहीं है, ये यहीं अभी वर्तमान में जीने, बढ़ने और दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया है।
एक और कथन है उनका अनुभव पर।
हाँ, अनुभव से हम नहीं सीखते, हम अनुभव पर चिंतन करने से सीखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये उस जांच की प्रक्रिया पर जोर देता है, मतलब सिर्फ कुछ कर लेना काफी नहीं है, रुककर सोचना जरूरी है कि उससे सीखा क्या, उसका मतलब क्या था।
चिंतन का महत्व, और ये वाला तो बहुत शक्तिशाली लगता है। लोकतंत्र को हर पीढ़ी में नए सिरे से जन्म लेना पड़ता है और शिक्षा उसकी दाई है।
हाँ, द स्कूल एंड सोसाइटी 1899 से ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बनी बनाई मिल गई और हमेशा वैसी ही रहेगी।
नहीं,
ये एक नाजुक पौधा है, इसे हर पीढ़ी को अपनी मेहनत से, अपनी समझ से और अपनी शिक्षा से सींचना पड़ता है, पालना पोसना पड़ता है। शिक्षा वो दाई है जो इस नए जन्म में मदद करती है।
भी कम नहीं हुई। अकेडमिक कठोरता में कमी वाले आरोप के अलावा और क्या मुख्य आलोचनाएं रही उनकी?
कुछ दार्शनिक थे जैसे बर्ट्रैंड रसल, जिन्हें उनकी भाषा थोड़ी कह सकते हैं अस्पष्ट लगी।
हाँ,
खासकर अनुभव जैसी जो उनकी मूल अवधारणाएं थी, वो थोड़ी धुंधली लगी।
अच्छा।
कुछ विश्लेषणात्मक दार्शनिकों ने उन पर ये आरोप लगाया कि वो पारंपरिक दार्शनिक समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें अर्थहीन बता रहे हैं।
और राजनीतिक स्तर पर?
हाँ, राजनीतिक रूप से कुछ रूढ़िवादियों को उनका झुकाव लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ पसंद नहीं आया, और शिक्षा व सामाजिक कल्याण में सरकार की भूमिका पर जो वो जोर देते थे उसकी भी आलोचना हुई।
धार्मिक आलोचना भी थी?
जी, कुछ धार्मिक आलोचकों को उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया और अलौकिक सत्ता को नकार कर वैज्ञानिक प्रकृतिवाद पर जोर देना ठीक नहीं लगा।
देवी के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं शायद।
हाँ, सुना है वो काफी भुलक्कड़ थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के इतने बड़े दार्शनिक और कभी कभी अपने ही पड़ोस में रास्ता भूल जाते थे। एक और दिलचस्प बात है, उन्होंने 70 साल की उम्र के बाद काफी गंभीरता से तैल चित्रण मतलब ऑयल पेंटिंग करना शुरू किया।
अच्छा, 70 के बाद?
हाँ, और ये भी शायद उनके उसी विचार से जुड़ा हो कि कला एक अनुभव है, जो उन्होंने अपनी किताब आर्ट एज एक्सपीरियंस में लिखा था, कि कला कोई सिर्फ म्यूजियम में रखी जाने वाली चीज नहीं है, वो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों का ही एक तीव्र और स्पष्ट रूप है।
और उनका लिखने का काम तो खैर अद्भुत था। 92 साल के जीवन में 1000 से भी ज्यादा लेख, निबंध और किताबें, ये अविश्वसनीय लगता है।
यकीनन, उनका जीवन असाधारण रूप से लंबा और उत्पादक रहा। ये भी जानना रोचक है कि उन्होंने चीन में भी लंबा समय बिताया, 1919 से 1921 तक, और वहां के शैक्षिक सुधारों पर उनका बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। ये सब चीजें दिखाती हैं कि वो सिर्फ एक कमरे में बंद रहने वाले विचारक नहीं थे, बल्कि दुनिया से, समाज से गहरे जुड़े हुए इंसान थे।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में, अगर हमें देवी के विचारों का एक निचोड़ निकालना हो, एक सार बताना हो, तो वो क्या होगा?
मेरे ख्याल से देवी की जो सबसे गहरी, सबसे मूल अंतर्दृष्टि थी, वो यही थी कि लोकतंत्र, शिक्षा और वैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने की प्रक्रिया यानी जांच, इन तीनों के बीच एक अटूट, एक अभिन्न रिश्ता है। ये तीनों मिलकर ही एक ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा मानवीय और ज्यादा सहयोगी समाज बना सकते हैं। उन्होंने कोशिश की कि दर्शन को हाथी दांत की मीनार से उतारकर जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने का एक व्यवहारिक, एक उपयोगी उपकरण बनाया जाए।
और आज के हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक विचार या सवाल जो वो अपने साथ ले जा सकें।
शायद ये सोचने के लिए कि आज जब हम सूचनाओं के इतने बड़े विस्फोट का सामना कर रहे हैं, गलत सूचनाओं का जाल फैला हुआ है, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, तब देवी का साझा जांच, शेयर्ड इंक्वायरी पर जोर, शिक्षा के जरिए विकसित की गई आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर, और लोकतंत्र को सिर्फ एक राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि एक नैतिक जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ मानने पर जोर, ये सब हमें एक बेहतर समाज बनाने और अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को नए सिरे से समझने में कैसे मदद कर सकता है।
जी, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।